मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैं ऊर्जा के स्रोत के बारे में बातें कर रहा था और उस विषय पर मैंने अपने स्रोत का उल्लेख किया था। इनफैक्ट मैंने जो अपने स्रोत का उल्लेख किया उसके पीछे मेरा उद्देश्य यह बताना था कि हम सब के पास ऊर्जा के अपने अपने स्रोत होते हैं। जरूरी नहीं कि जो मेरा स्रोत है वह आपका भी स्रोत हो और जो आपका स्रोत है वो किसी तीसरे का स्रोत हो या सबका स्रोत हो। सबको अपने अपने स्रोत की तलाश करनी पड़ती है और सच पूछिए तो मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि तलाश करने की जरूरत ही नहीं होती, आपको मिल जाता है। आपकी अचानक उस स्रोत से मुलाकात होती है और आप चौंक पड़ते कि अरे हाँ, ये मेरे लायक है, ये मेरे ऊर्जा का स्रोत है, यहां से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ये मेरा मार्गदर्शन करेंगे, ये मुझे उत्साह देते रहेंगे, मेरे अंदर ऊर्जा भरते रहेंगे। नहीं नहीं, ये मेरे लिए बिल्कुल सही मॉडल है। और सच पूछे कुछ अचानक ही ऐसा हो जाता है जैसा कि मेरे साथ हुआ। लेकिन देखिए होता क्या है, जो हमारे सामने सबसे बड़ा संकट है या यूं कह लीजिए कि हमारे मस्तिष्क की जो अपनी विडंबना है वो हमें यहां समझनी होगी। हमें लगता तो है कि नहीं यह बात है, जैसे आप देखिए कि आप कोई बहुत ही मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आप अंदर से बिल्कुल चार्ज्ड हो जाते हैं कि अरे वाह क्या बात है, और आपका मन उत्साह उमंग से इतना भर जाता है कि अब तो मैं चट्टान तोड़ डालूंगा, पहाड़ फोड़ डालूंगा, कुछ भी कर सकता हूं। और यदि आपको ऐसा लगता है तो गलत नहीं लगता। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पर आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का बिल्कुल अक्षय भंडार तैयार हो गया। मैं अक्षय भंडार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऊर्जा एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो खत्म होती है तो जनरेट भी होती रहती है। यानी कि ऊर्जा तो लगातार क्षरण हो ही रहा है, उसका खत्म हो ही रहा है, लेकिन हमारे अंदर कुछ मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जितनी वो नष्ट होती है उतनी वो बनती भी चली जाती है, और इस तरह से ऊर्जा का जो प्रवाह है हमारे अंदर निरंतर बना रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद ही ऊर्जा का वह स्रोत हमारे लिए निष्प्रभावी हो जाता है। यूं कह लीजिए कि हमें उसकी आदत पड़ जाती है, वो हमारे जीवन के रूटीन में शामिल हो जाता है, और जैसे कोई चीज रूटीन में शामिल हो जाती है तो आप ये कह लीजिए कि वो चीज बासी लगने लगती है या ऊब होने लगती है या उसका जो एक विशिष्ट स्थान था वह विशिष्ट स्थान गायब हो जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि जब वह विशिष्ट स्थान गायब हो रहा है तो हमने उसे अपने अंदर इतना आत्मसात कर लिया है कि वह हमारे जीवन के मैकेनिज्म का हिस्सा बन चुका है। इसीलिए अगर वह गायब हो भी गया तो गायब नहीं हो सकता, यानी कि आप उसे भूल गए हैं, मतलब वो गायब हो गया है, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। लेकिन ऐसा बहुत कम रेयर लोगों के साथ हो पाता है जो उसे एकदम आत्मसात कर चुके होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, बहुत जरूरी होता है कि जिस स्रोत की आपने पहचान की है, पहचान करने के बाद जिसका आपने चयन कर लिया है, उसके साथ लगातार अपना जीवंत संपर्क बनाए रखें। ये नहीं कि बस एक बार फैसला कर लिया और बात खत्म हो गई और सब कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप इसे यूं कह लीजिए कि आप एक पौधा लेकर के आते हैं, एक प्लांट लेकर के आते हैं खूबसूरत सा, आपको लगता है कि वह इसे देखने में अच्छा लगता है, ये हमें ऑक्सीजन गैस देगा, ये बकायदे फूल भी देगा, सुंदरता तो है ही। आप ले आते हैं और उसे एक गमले में लगा देते हैं, क्या इससे ही बात खत्म हो जाती है, आपका काम पूरा हो जाता है? नहीं, आपको इस पौधे की देखरेख करनी पड़ती है, आपको लगातार इसमें पानी डालना होता है, जरूरत पड़ने पर खाद भी डालना होता है, और यदि खरपतवार उगाए हैं तो उनकी गुड़ाई निंदाई भी करनी पड़ती है, तब जाकर के कहीं वह गमला, वह पौधा हमेशा के लिए आपके साथ रहता है और लगातार बढ़ता रहता है, बल्कि उसकी जो क्षमता है आप यूं कह लीजिए कि विकसित होती रहती है, उनमें वृद्धि होती रहती है। क्या आप ऐसा करते हैं? सोचना होगा। मैं अब फिर से थोड़ी सी अपनी बात बताना चाहूंगा कि ठीक है, मुझे लगा कि नहीं, विवेकानंद मेरे लिए ऊर्जा के सर्वोत्तम स्रोत हो सकते हैं। मैं वो कोटेशन लेकर के आ गया और बकायदे उसे अपने स्टडी टेबल भी हुआ करती थी, कोई कमरा तो होता नहीं था, एक छोटी सी टेबल थी जिसके सामने बैठ करके पढ़ लिया करते थे, तो दीवार पर मैंने टांग दिया ताकि बार बार उस पर नजर जाती रहे। और सच पूछे तो जैसे ही मैंने दीवार पर उस कोटेशन को टांगा, वो जो मेरा टेबल था वो एक प्रकार से मंदिर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मैंने उस आस्था का संचार अपने अंदर किया। अब वो मेरे लिए कोई कमरा नहीं रह गया, मेरे लिए कोई अध्ययन कक्ष नहीं रह गया, मेरे लिए सही मायने में वह एक तरह से आप यूं कह लीजिए कि आराधना कक्ष बन गया, उपासना कक्ष बन गया। अब आप देखिए कि मैंने क्या किया। मैंने कहा ठीक है, चलिए विवेकानंद जी मेरे ऊर्जा के स्रोत बन गए हैं, तो अब मैंने विवेकानंद जी पर पढ़ना शुरू किया, उनकी जीवनी, उनके वक्तव्य, उनकी रचनाएं, जो कुछ भी मुझे मिला वो मैंने पढ़ा, और मैंने खूब पढ़ा, विवेकानंद जी को बहुत पढ़ा। होता क्या है कि जब आप किसी का चयन कर लेते हैं किसी विचार के आधार पर, तो जब आप पढ़ेंगे तो जहां जहां इस तरह के अंश आएंगे वहीं आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए ठहरेगा, गहराई में उतरेगा। तो मैंने पाया कि जो विवेकानंद का पूरा चिंतन है, उनका जो चिंतन का जगत है, वो तो बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत ही यथार्थवादी है। और मैं आप यूं कह लीजिए कि प्रवृत्ति से थोड़ा सा यथार्थवादी था, तो मुझे लगा कि यार ये तो सोने में सुहागा हो गया। मैं यथार्थवादी विचारों को थोड़ा सा ज्यादा पसंद करता हूं, विवेकानंद जी वही बात कर रहे हैं, इसके माध्यम से वो धर्म की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं, ईश्वर की बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, तो बात बन गई। तो उससे जो मेरी आस्था थी और मजबूत हो गई, और जब आस्था और मजबूत हो जाती है तो उसमें से और ज्यादा ऊर्जा निस्सृत होने लगती है, निकलने लगती है। तो मुझे लगता है कि चयन के बाद की यह अगली प्रक्रिया है, चयन के बाद का यह अगला चरण है जिस पर ज्यादातर हम ध्यान नहीं दे पाते। तो दोस्तों आज बस इतना ही, नमस्कार।